कपिल देव की जो गंगा सागर में तपस्या में समाधि में मग्न है उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, जो कपिल ज्ञानावतार या सांख्य योग के प्रवर्तक माने जाते हैं, कर्दम और देहूति के पुत्र भगवान कपिल की प्रेम से स्तुति की जा रही है। तो बड़े भाव से प्रेम से बोलना चाहिए ध्यान से सुनते हुए। हम भी अंशुमान जी के साथ भगवान कपिल की स्तुति करने का ये अवसर सौभाग्य लूट सकते हैं। त्वं त्वामहं ज्ञान घनं स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहे स्वनंदनाद्ये मुनिभिर्विभाव्यम् कथं विमूढ परिभावयामि। बोलिए। माताएं परिभावयामि। ठीक है, शब्दार्थ तम उस, त्वाम आपको, अहम मैं, ज्ञान घनम घनीभूत ज्ञान स्वरूप आप, स्वभाव स्वभाव से, प्रध्वस्त कल्मश रहित, माया गुण तीनों गुणों से उत्पन्न, भेद मोहे भेद रूपी मोह के प्रदर्शन द्वारा, सनंद माध्ये चारों कुमारों के द्वारा, मुनि भी ऐसे मुनियों द्वारा, विभाव्यम पूज्य, कथम कैसे, विमूढ प्रकृति द्वारा मूर्ख बनाया गया, परिभावयामी आपके विषय में सोच सकता हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा चारों कुमार, सनक सनक सनंदन तथा सनातन ही ज्ञान के पुंज आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है? तात्पर्य, स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्थिति को बताता है। अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। सगुणान समतीयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवद्गीता 14:26। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हुए ही वह ब्रह्म पद पर आसीन होता है। चारों कुमार तथा नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुष है। ऐसे महापुरुष स्वभाव से भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन गुण के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण बद्ध जीव ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवद गीता 2:45 कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। मनुष्य को तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों गुणों के प्रभाव में बना रहता है वह भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। तो बड़ा संक्षेप में सार गर्भित तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। निमिष सुखदेव जी गंगा अवतरण प्रसंग को सुना रहे हैं। सुरसरी भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाने में सूर्य वंश के राजर्षियों की तपस्या भक्ति का इतिहास सुनाया जा रहा है। अंशुमान, जिसके विषय में आगे सुखदेव जी ने बताया है कि पितामह के प्रति हिते रताहा, उसके हित में रत थे ये अंशुमान। कल महाराज जी बता रहे थे कि सगर के 60,000 पुत्र उस कपिल देव के प्रति कुछ अवहेलना अपशब्द कहने के कारण स्वयं निज अपराध में जलकर भस्म हो गए, और उसी महाराज सगर की दूसरी पत्नी केशिनी, जिनसे असमंजस हुए थे, जो जाति समर थे और पूर्व जन्म में किए हुए योग के प्रभाववश उन्हें कुछ योग शक्तियां एवं पूर्व स्मृति प्राप्त थी, जिसके बल पर वे बड़ा चमत्कार भी दिखा दिए कि सरयू के जल में बहा दिए गए उन अवधवासी बालकों को पुनः ला दिए, लेकिन फिर चले गए। उसी असमंजस के पुत्र है ये अंशुमान। राजा अंशुमान अपने 60,000 दादा जो जलकर भस्म हो चुके हैं, और वो जो अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा हुआ घोड़ा, उसको खोजते हुए उस बद्रिका गंगा सागर पहुंचते हैं, और वहां पर जाते ही सब समझ जाते हैं क्या घटना हुई। भगवान कपिल देव वहां विराजे हुए हैं। आप सभी वैष्णव जानते हैं कि भगवान के महान भक्त योगीराज करदम के सुपुत्र हैं। भगवान करदम जी की और देवहूति की भक्ति से वशीभूत होकर उनके गर्भ से जन्म लिए हैं। स्वयं अजन्मा होते हुए भी भगवान मानव समाज को एक सांख्य योग का दिव्य ज्ञान देने के लिए, जो ज्ञान जीव को कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता है, उसको देने के लिए कपिल के रूप में प्रकट हुए। ऐसे हम विचार करें तो भगवान के लगभग अवतारों में ज्ञान देना ये प्रमुख रहा है। कृष्ण अवतार में भी भगवद गीता को दिए, व्यास अवतार तो चाहे शक्त्यावेश अवतार लीजिए या लीला अवतार, राम अवतार में भी समय समय पर, स्थान स्थान पर अपने भक्तों से, भक्तों को माध्यम बनाकर मानव समाज के उत्थान के लिए, उत्थान का अर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान ने ज्ञान दिया है। तो भगवान कपिल तो स्पेशल ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। करदम जी की तपस्या पर भी मैत्रेय जी ने चौथे स्कंद में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन एक बात हम सभी वैष्णवों को हृदय में छूती है सुनने पढ़ने पर कि करदम जी की तपस्या पर भगवान श्री विष्णु के आंखों से भी अश्रु बह गया था। इतनी भारी तपस्या थी प्रेमवश, और कहे स्वयं कि तुम्हारा विवाह होगा, 3 दिन के बाद आएंगे मनुमान। और देवहूति की जो पतिव्रता या भक्ति है, समर्पण है, वो भी बड़ा प्रेरणादायक है। भगवान कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक, जिसको यमराज जी छठे स्कंद में महाजनों में भी याद करते हैं, कुमार कपिल मनो, महाजन क्या, भगवान ही है साक्षात वे। भगवान कपिल जिसके लिए यहां पर शुक जी ने लिख दिया है सत्व प्रधानम, जिसका श्री विग्रह सच्चिदानंद है, विशुद्ध सत्वमय जिनका कलेवर है, सरल शब्दों में प्रकृति के ये जो माइक गुण है रजस तमस सत्वादि, उनसे परे जिनकी सत्ता स्वभाव या स्वरूप है, वे भगवान कपिल कैसे क्रोध कर सकते हैं। कपिल की क्रोधाग्नि से नहीं, बल्कि स्वयं अपराध ब्रह्म अवहेलना के कारण वे भस्म हो गए। लेकिन वही भगवान कपिल देव शांत मुद्रा में अपने निज स्वरूप समाधि में मस्त है, और इस तरह आकर उसको चोर कहना और अवहेलना करना, जिसकी शक्ति के विषय में हम कल सुन रहे थे कि समुद्र जिसने बना दिया पृथ्वी को खुदित कर, कितना हूं कोई भारी हो, ज्ञानवान हो, तपस्वी हो, योगी हो, कुछ भी हो, भगवत अपराध, वैष्णव अपराध, ब्रह्म कुल में जन्म लिए हुए ब्राह्मण वैष्णव का अपराध सब क्षार कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए रहुगण के उस वाक्य को भक्तों को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, शंके भृशम ब्रह्म कुलाव मानात। स्पष्ट कहा रहुगण ने जड़ भरत जी से, नाहम विशंके सुरराज वज्र, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न यमस्य दंडात न त्रयक्ष शूलात, शिव जी के त्रिशूल से न हमको भय है न यम के दंड से भय है, सोम अग्नि कोई भी देवता हो, उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, हम उनसे डरते नहीं हैं, डरते हैं वैष्णव ब्राह्मणों के चरणों में किए हुए अपमान अपराध से। भृशम विशंक बहुत डरता हूं कहा। भागवत में दशम स्कंद के चौथे अध्याय के 46 अंतिम श्लोक में सुखदेव जी ने सार दिया है, आयु श्रीय यशो धर्मो लोकानाम आशीष में वचन, उस मनुष्य की उस व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी, यश नष्ट हो जाएगा, धन ऐश्वर्य श्री चला जाएगा, और देवताओं के और उसके पूर्ववर्ती पूर्वजों के कुछ जो आशीर्वाद होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे सब, किसके, जो व्यक्ति वैष्णव ब्रह्म ब्राह्मणों का अपराध करता है, उनकी अवहेलना करता है, उनका सारा नष्ट हो जाएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं तत्क्षणात् भस्मसात, उसी क्षण राख बन गए, ये 60 के 60 हजार। तो भक्ति में हमारी प्रगति वैष्णव साधु कृपा है, और भक्ति में हमारी बाधा अवरोध वैष्णव साधु अपराध है। तो जो वैष्णव साधक शीघ्रता से भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उनके लिए ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी, ऐसा सेवा करना होगा जिनसे परंपरागत वैष्णव साधुजनों के कृपा भाजन, कृपा का पात्र बना रहे, नहीं तो यही की हुई सेवा और साधना साधु शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो निश्चित अहंकार और अपराध का पात्र बना देगी, और भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से हमें च्युत कर देगी, नीचे गिरा देगी। फिर साधना तो रह जाएगी लेकिन समय लग जाएगा, और अहंकारावश पतन के भी बहुत चांस। तो कुछ प्रसंग भागवत में या रामायण में, चैतन्य चरितामृत में हम वैष्णवों को सुनने मिलते हैं, जिससे हमें सावधान होना पड़ेगा कि कुछ भी हो, जैसे हम बिजनेस में जाते हैं गृहस्थ लोग, तो बुद्धिमान लोगों को सलाह देते हैं उनके पिता या उनके वडिल, हाँ, कि बेटा कमाओ नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मूडी न जावी जाए, नुकसान मत करना, है ना, जो तुमको दे रहा हूं बड़ा हो नहीं तो काहे बात, तो लाख ना बार न कर दो, ऐसे गुजराती में हम कहते हैं कि जो कमाओ नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बैलेंस है मूडी एम तो ये तो हाथों जो तो बहुत है जो। ऐसे ही हम भक्ति मार्ग में अभी प्रभुपाद की कृपा से, गुरु वैष्णव साधु के अनुग्रह से लगे हैं, देवताओं से भी दुर्लभ ये सु अवसर हमको मिला है। अब हमें चाहिए कि हम महाप्रभु के इस मिशन में, संकीर्तन के प्रचार में, हाँ, अपने तन मन धन को न्योछावर करें। समय बहुत कम है, ये दुर्लभ मानव देह भगवान ने दिया है, जिसका सार नारद जी बताते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का भजन हमारे लिए जीवन में प्रत्यक्ष हो रहा है। जीवन हई लशेष ना भजिले ऋषिकेश, जीवन तो शेष हो रहा है और ऋषिकेश का भजन नहीं हो रहा है। नष्ट कर रहे हम। अरुणोदय कीर्तन में भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह भाव दिया है। हम उदीन तपन हई लस्त दिन गेलो बोली भई देवी अस्त। सूर्य उदय होते अस्त होते ही बकबक फालतू संसार की बात बोलने में और इसी चमड़े से बने शरीर को खिलाने पिलाने सुलाने व्यवस्था करने में हमारा समय जा रहा है। और जीवन का जो लक्ष्य है भगवत तत्व को समझना, जो गीता में भगवान कहते तत्वतः मुझे जानो, या वेदांत सूत्र शुरुआत करता है ब्रह्म जिज्ञासा की, या भागवत कहता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो सब कुछ हम सुनते जानते हुए दूसरों को प्रचार करते हुए स्वयं अज्ञान में, ये सब करते हुए हम कुछ नहीं कर रहे अपने लिए, ये बड़ी माया है। जैसे पूरे अंधेरी कोठरी में अंधकार भरा हो और उसमें कोई दीपक जला दे तो पूरे खंड को उस कक्ष को उजाला कर देता है वो दीपक की लौ, मोमबत्ती की लौ, लेकिन उस स्वयं के नीचे अंधेरा है, वो शेडो पड़छाया है उनके। ऐसे ही हम कहीं ऐसा तो नहीं है ना, हमारा कुछ ऐसा तो नहीं है, हमें देखना चाहिए भक्तों को। इसीलिए सार वस्तु है कि हमें वह सेवा ऐसी साधना करनी है जिसे वैष्णव साधुओं का अनुग्रह बना रहे और वह होगा उसकी आज्ञा पर और समर्पण भाव से करने से, क्योंकि हमारी साधना में कोई दम नहीं है, शक्ति है वैष्णव की कृपा में, उसको लेने के लिए हमें बहुत बुद्धिमान बनना पड़ता है। नहीं तो हम ऐसे कई प्रसंग शास्त्रों में सुनते हैं कि उच्च स्तर पर होते हुए भी कुछ कुछ बातें ऐसी जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर भक्ति मार्ग का अपराध अपमान, जबकि हमारे महाप्रभु का हमारे लिए आदेश है मान देना, सबको मान देना है, किसी का अपमान करो ऐसा तो आदेश है नहीं, सबको मान देना ये आदेश है, ये महाप्रभु की इच्छा है। तो इसीलिए इस दुर्लभ मानव देह का सार तत्व भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम प्रयोजन है, उसके लिए सारी सुविधा भक्तिवेदांत स्वामी और उनकी संस्था और इस संस्था से जुड़े हुए वैष्णव ने हमें प्रदान की है, विग्रह देकर भगवत तात्पर्य देकर महाप्रसाद देकर। कितना निश्चित भजन है, हम लोग आकर बैठ जाते हैं हमारे लिए प्रसाद कोई वैष्णव बना के रखे है, भोग लगा के रखे है, बस आप विराजिए कथा में विराजिए प्रसाद में विराजिए, फिर मंदिर भाई कुछ सेवा करिए जप करिए, कितना सुनर रहा उसे, ये तो कोई अपना भी नहीं करता और ये लोग अहेतु अकारण कर रहे हैं वैष्णव लोग हमारे लिए। तब ये अवसर हमें मिला है तो स्वयं शुद्ध भजन करते हुए अब क्या कर्तव्य है, परोपकार। जन्म सार्थक करी करो, परोपकार दूसरों के लिए लगाना। हमें भी इस संस्था में इस मिशन में कुछ ना कुछ सहयोग देना, जो भी भगवान ने हमें दिया है, बुद्धि दिया है शरीर बल दिया है, कुछ नहीं दिया तो मन तो दिया है, मन से अच्छा सोचे तो सही इसके लिए, ये भी एक सेवा है। मानस पुण्य हो ही नहीं इतरे न, भागवत में तो ये लिख दिया है ना, नैमिषारण्य में सूत जी बताते हैं नानु देष्टि कलि सम्राट सारंग इव सारभि, कलयुग का सार देखा उस राजर्षि ने परीक्षित जी ने, जैसे भ्रमर फूलों का रस सारंग जानता है लेना, ऐसे ही कलयुग का सार तो है ये हस्ती को महान गुण, लेकिन दूसरा गुण था कि मन में किए हुए अच्छे विचार पुण्य का भक्ति का लाभ मिलता है और पाप का नहीं तो इसको तो लाभ उठाए। लेकिन हमारे जन्मजात कर्मानुसार जो स्वभाव हमें मिला है और प्रकृति के गुणों का रजस तमस काम क्रोध निद्रा आलस का ये प्रभाव है कि हम इस मार्ग में इतनी सुविधा इतनी कृपा होने के बाद भी चूक जाते हैं, मिस कर देते हैं इनको। इसीलिए ये नित्यम भागवत सेवया है। कब तक बने रहेंगे हम संडे भगत रविवारी भगत? संडे को संडे हाजिरी लगा दो, हमारे में कब वो भाव प्रेम कि जीवन बीत रहा है, जीवन का लक्ष्य गुरु वैष्णव कृपा से प्राप्त है, फिर भी हम आलस में स्वार्थवश विषयों में भोगों में आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं और उसके कारण भागवत हमारे घर पर है, भागवत को समझाने वाले हमारे संग में है, फिर भी हम इनका लाभ नहीं उठा पाते। अनुराग नहीं हो रहा है, महाप्रभु का ये दैन्य है लेकिन हम लोग का ये सत्य है। दुर्देव दृश्य मिहा जनिना अनुराग। इसीलिए हमें ऐसे वैष्णव संगति करनी है जिसकी प्रीति भगवान में है, भगवान के अभिन्न विग्रह श्रीमद् भागवत में है, भगवान से अभिन्न भगवान नाम में है, जो शुद्ध भाव से लगा है। रूप गोस्वामी का आदेश उपदेश है उपदेशामृत में हमारे लिए, निंदादि शून्य हृदय तार संग लब्ध्वा, उन वैष्णव भक्तों के संग के लिए हमें लालसा प्राप्त करनी है, करना है, तब हम शीघ्रता से इन इन अवरोध स्पीड ब्रेकर अपराध से बचते हुए कृपा को प्राप्त करते हुए भगवत गति कर सकते हैं, क्योंकि भगवत कृपा भी भक्त कृपा का अनुगमन करती है। भगवत कृपा भी वैष्णव कृपा का अनुगमन करती है और जहां से वैष्णव से उस भगवान का प्रेम भक्ति कृपा भक्ति जो मिलने वाला है उसके प्रति ही हम कुछ विरोध करते हैं तब कृपा का तो दरवाजा ही बंद कर दिया हम लोग, है ना, वहां से तो आती है। सनातन गोस्वामी ने प्रथम नाम अपराध की टीका हरि भक्ति विलास में यही बात दिया है कि जो हरि नाम का प्रचार करते हैं उनकी निंदा करना, जबकि भगवान नाम क्या ये महात्म्य भगवान नाम की ये कृपा जो सार वस्तु है उसका जो प्रचार करते हैं स्वयं आचरण करके उनका अपराध, कभी हरि नाम कृपा नहीं देगा। प्रथम नाम अपराध में जो हम बात है उसमें सनातन जी बड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, समझने लायक हम सभी वैष्णवों को। ये प्रसंग सरल है, हम लोगों ने कई बार सुना है कि कपिल देव के आश्रम में 60,000 भस्म हो गए, लेकिन इस पर ये विचार है हम वैष्णवों का। और भागवत के प्रत्येक श्लोक या शब्द या अक्षर की बात ले लीजिए, लिख दिया है शुक जी ने व्यास जी ने विचारण परो भक्त्या विमुच्यते, इसका इन श्लोकों पर विचार करने पर श्रवण करने पर कीर्तन करने पर भक्ति प्राप्त होगा, वैष्णव भक्ति प्राप्त। 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय जो है 12वां उसका अंतिम श्लोक, हाँ 3-4 श्लोकों में ये है, श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन पारम हंसमेक अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित निष्कर्म आविष्कृतम। बहुत जगह से बहुत कुछ श्लोकों में कहीं पर ये सारी बातें लिखी गई, हमें हमारे इस कीमती जीवन मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये सोचना चिंतन कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं उसको हमें इसमें लगाना। कल महाराज बता रहे थे इस बात कि इसी तरह इस संसार के नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने में घर बनाने में ये जब उसी में इस शरीर का या इस बुद्धि का इस समय का दुरुपयोग नहीं करना, उपयोग करना है भगवान को समझने के लिए। प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए संघ खोला जिसमें सबको ये चांस ये अवसर दिया जाता है कृष्ण से जुड़ने का, कृष्ण को समझने का, अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने का, वैष्णव ब्राह्मण बनने का। तो हमें इन अवसर का पूरा लाभ उठाना है। पूरा लाभ उठाना मतलब जो हम कर रहे हैं उसको भाव से नियमितता से और नित्य में लाना है, ये कहने का उद्देश्य है। भगवान कपिल की भक्ति चाहे करदम जी के चरित्र चाहे देवहूति माता का चरित्र सब हमारे सामने है भागवत के द्वारा और वैष्णव के द्वारा प्रवचनों के माध्यम से, इससे हमें हमारे जीवन में उतारना है इसको। सीखना है कुछ। और इस श्लोक में अंशुमान जी उस भगवान कपिल की स्तुति करते हुए बड़ा सुंदर विशेषण देते हैं, त्वाम ज्ञान घनम। आप कौन हो हे भगवान कपिल? त्वाम आप ज्ञान घनम। इसका अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी ज्ञान घन का अर्थ करते हैं साक्षात ज्ञान मूर्ति। ऐसे भी आप लोग सुने हो वैष्णव, सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान का श्री विग्रह कैसा है? सत और चित शब्द न ज्ञानम, आप जानते होंगे संधिनी संवित अलादिनी सत चित आनंद। तो ये चित माने ज्ञान। भगवान पूर्णतः स्फुरित है, पूर्ण ज्ञानमय है, ज्ञान घन है। कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, कई जगह पर ये सारी बातें आई है। आगे सत्व गुण प्रधानम कर दिया है भगवान कपिल को, और हम सब जीवों की क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व करते हुए अंशुमान जी अपने आप को कहते हैं त्रिगुण प्रधाना। कल के श्लोक में आया था कि हम सब तीन गुणों के अधीन है और भगवान तीनों गुणों से परे विशुद्ध सत्व में, वासुदेव सत्व में उसकी स्थिति है। वे भगवान कपिल साक्षात ज्ञान अवतार है, ज्ञान घन। घन का ऐसे अर्थ बादल होता है, बादल में जैसे जल भरा रहता है पूर्णतः, जैसे भगवान के श्री विग्रह में पूर्णतः आवृत। घन शब्द का अर्थ ऐसे भी चौर पूर्णतः, नख से लेकर सीख तक पूरा श्री विग्रह लबालब ज्ञान से भरा है। मान लीजिए कोई पूछे कि कृष्ण के शरीर में क्या है, हम लोग कहते हैं कि पंच महाभूत ये विकार नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और उनसे विकार मांस हड्डी नहीं, क्या है? पूर्णतः ज्ञान है भगवान कृष्ण सनातन। उसके शरीर की सत्ता है, ज्ञान है और आनंद है। कृष्ण के शरीर में ज्ञान आनंद ही है। अब ये बात सुनने में तो हम समझ लेते हैं लेकिन अनुभव नहीं है, बैठती नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ज्ञान क्या वस्तु है, कैसे क्या मसाला है ज्ञान? बुद्धि क्योंकि जो जो बात यहां लिखी है वो थोड़े ऊंचे शब्दों में है। हम सुन लेते भगवान ज्ञानमय है, आनंदमय है, उनके शरीर में ज्ञान है, आनंद है, लेकिन ये ज्ञान मसाला है क्या? कोई क्या है आनंद क्या है? और हम लोग की बुद्धि से परे है ये विषय, ऐसे समझने पर इतना तो समझ में आता है कि चलो ये विकार में शरीर नहीं है, लेकिन फिर पूरा हो गया है, फिर क्या है वो तो पूर्णतः नहीं समझ में आता। आत्मा राम है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, त्रिकुण जी के गुणों से पार है, ये सब दार्शनिक शब्द बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न ही है। क्योंकि हमारे पास जो भी बुद्धि है, इंद्रिया है, सब जड़ है, और ये जो विषय है ज्ञान या आनंद अप्राकृत राज्य का, उसको कैसे हम भौतिक आनंद को कुछ समझ सकते हैं? भौतिक मटेरियल वस्तु को कुछ हम देखने सुनने पर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये जो विषय है वो इनसे इंद्रियों की अनुभूति से परे है। लेकिन हम इसको गीता के माध्यम से थोड़ा सरल कर सकते हैं कि भगवान ज्ञान घन है, ज्ञानमय है, तो ज्ञान का एकदम इजी सरल अर्थ करें जानकारी। तुमको ज्ञान है, वो उधर क्या बोला था, क्या एक जानकारी, हमारे देसी हमारे दैहिक जो बुद्धि से हम जो शब्द यूज करते हैं हमारे बोलचाल में व्यवहार में, यही जानकारी है, पता है। ज्ञान माने सरल, एकदम नीचे से लिया जाए इसको। तो हाँ, भगवान ज्ञानमय है तो गीता में कहे भविष्याणि च भूतानि च वेदा सहम। गीता में भगवान कहे है कि ये जितने चार अचर जीव है उन सब का भूत भविष्य वर्तमान अहम वेद मैं जानता हूं। भगवान को ज्ञान है एक बाह्य रूप से, जीवों का क्या करते हैं क्या किए हैं वो सब ज्ञान है। इस भौतिक जगत के ये जो एक पाद विभूति है, भौतिक जगत त्रिगुणात्मक, ये 14 ब्रह्मांड उप ब्रह्मांड भी ले लीजिए, इसमें पितर लोक यम लोक ये 14 लोक में नहीं आते, साइड लोक है सब, उनको भी ले लीजिए अंदर, नरक लोक आगे सब, सब का चार अचर सभी जीवों का भगवान ने कह दिया हम वेद मैं जानता। इसके बाद प्राकृत जगत के परे अप्राकृत जगत का भी सभी पार्षद हो जाए, पूर्णतः उसको सब कुछ ज्ञान है, सब जानकारी एक एक अर्थ। और जहां तक इससे एक स्टेप ऊपर उठ जाए वेदों का शास्त्रों का, तो उसको तो गीता में स्वयं कहे कि वेदांत कृत, मैं ही वेद बनाया हूं, वेद विदेह चाहम, वेदों से तात्पर्य है मुझे समझना, मुझे जानना। और जिनकी शास्त्र कहता है जिनकी सांस से वेद निकला है, जाके वेद सहज श्रुति चाहे, जिनकी बांसुरी से भी वेद निकलता है, पूर्णतः ज्ञानमय विग्रह है, तो कहीं से भी सारे इंद्रिया अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, एक इंद्रिया और कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकती है। हम लोग की तरह नहीं है कि शब्द ज्ञान केवल कान प्राप्त कर सकते हैं, आंख नहीं, रस स्वाद का जो ज्ञान है वो जीवा प्राप्त कर सकती है। दाल को कान में डालने से नमक कम है कि ज्यादा पता नहीं चलता है ना, उसको जीभ पर लगाने से पता चलता है। आंख बंद करके कोई बताए कि बताओ कौन सा कलर है, चक के बताओ काला है कि लाल, तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन भगवान ज्ञान घन है, ऐसे बहुत रूप से व्याख्या करा किया जा सकता कि उसका भीकर संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान है ही, वेदों का प्राकृतिक जगत का ज्ञान है ही है। ये हम भौतिक लेवल पर बात कर रहे हैं सब कुछ, ये जो ज्ञानमय है उनका तो अप्राकृतिक तो बहुत कुछ, ये तो हम जो देख सुन रहे हैं और हमारी जो दुर्बद्ध अवस्था है उससे परे कैसे ये है, ये कुछ कुछ प्रकाश देख सकते हैं कि ये कितने एडवांस है भगवान। लेकिन सीधा एक अर्थ किया जाए कि भगवान ज्ञानमय है और इसीलिए सब जीव उनके अपने हैं और इसीलिए उनके प्रति परम प्रेम है, उनके सुयद, कल महाराज बता रहे थे सुयदम, हमारे वास्तविक हित करने वाले अकारण करुणामय भगवान है और वे उनको ज्ञान है और इसलिए वो हमारा हित करने के लिए अवतार लेते रहते हैं। जैसे कपिल के रूप में भी अवतार लिए है ज्ञान देने, हमारा हित करने के लिए, कृष्ण अवतार भी कोई भी अवतार भगवान लेते हैं या उनके भक्तों को भेजते हैं या अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, पुराण अर्क अधुनोदित भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं, क्यों? हमारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते। मतलब एक भक्त बड़ा सुंदर सरल बता रहे थे कि भाई हम अज्ञान में है माया के कारण, क्या अज्ञान है, स्वरूप को भूले हुए हैं हम, कृष्ण के दास है आत्मा इसको भूले हुए, शरीर समझते हुए विषय भोगों में रत है, ये हम अज्ञान में। लेकिन वे प्रभु जी तो ज्ञान में है, गिरधारी तो ज्ञान में है ना, वो तो अज्ञान में नहीं, वे जानते हैं कि ये बेचारा भटक भूल रहा भोगों में जन्म अपि मरणम कर रहा है, तो इनके उद्धार के लिए संभवामी गीता भागवत भेजना, वैष्णव को सब व्यवस्था कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि आ जाए मिल जाए और पूर्णता आ जाए। लेकिन भगवान का बहुत तत्व से व्याख्या करने पर यह अर्थ बड़ा अच्छा लगता है, जिसको एक और आचार्य ने किया है, विशुद्ध चैतन्य स्वरूपम इति ज्ञान घनम, बाल प्रबोधिनी में गिरधर लिखते हैं तो वो अब इस ज्ञान मूर्ति से वो शब्द आकर्षित करता है कि विशुद्धम चैतन्य स्वरूपम ज्ञानम घनम इति। वास्तव में भगवान विशुद्ध, विशुद्ध मतलब सत्व रजस तमस से परे, और चैतन्य साक्षात ज्ञान प्रकट है, आनंद घन है, चेतनामय है, और इसीलिए उनकी जो करुणा है कृपा है जीवों के प्रति वो यथावत है। हमारा ज्ञान है त्रिकाल बाधित है, परसों का आपको पता नहीं, पूर्व जन्म में को पता ही नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं सब सत्व रजस तमस के प्रभाव से परे का ये अर्थ है कि भूत भविष्य वर्तमान कोई काल क्रिया नहीं है भगवत ज्ञान में। वो यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं, यशोदा के आंगन में खेलना तो बड़े हो गए हैं, देवकी के उदर से प्रकट हुए उसी समय ज्ञान में है। महाराज सरल व्याख्या करते हैं ना कि उसके पिता माता को पूर्व इतिहास सुना दिए, तुम पहले जन्म में ये थे, पृष्णी गर्भ सब बता दिए, तीनों चरित्र बता, ज्ञान में। ऐसा नहीं कि उनको जाना है स्कूल में फिर कुछ सीखना है वेद वेदांत, वो करते हैं वो भी उनकी मम वर्तमान वर्तन थे मनुष्यापार्थ सर्वश यद्यत आचरती श्रेष्ठ। वो सीखा, कृष्ण जगत गुरु है तो सिखाने के लिए गए सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में, और वहां जाकर पढ़ रहे हैं, वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ रहे हैं राघवेंद्र सर का। लेकिन ये तो उनकी लीला है मानव समाज को शिक्षा प्रेरणा देने के लिए, वो तो उन गुरुओं को धन्य करने के लिए गए सांदीपनि या वशिष्ठ को, और वो इसीलिए तो ये सब कर रहे थे कि भगवान आ जाए। ये जो सूर्यवंश के राजा ऋषि को इतिहास का वशिष्ठ को सौंपा गया पुरोहित पना, उन्होंने मना कर दिया था, नहीं चाहिए हमको ये सब फालतू की यजमान का नौकरी उनके पीछे घूमना कवर के लिए नहीं चाहिए, लेकिन बोले इसमें भगवान आने वाले हैं राम, तो भगवान जिस कुल में आ रहे उस कुल को तो मैं करूंगा क्योंकि उनका संग मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा, ये उनके साथ कितना आनंद मिलेगा, तो स्वीकार किए। तो उनको यश देने के लिए, अपने ऋषि गुरु भक्तों को यश देने के लिए, मानव समाज को सिखाने के लिए वो लीला करते, अन्यथा वो स्वयं ज्ञान घन है और त्रिकाल बाधित ज्ञान नहीं है उनका, सर्वत्र उसको याद। इसीलिए हम भक्तों के लिए ये बात बड़ी प्रेरणादायक है कि भगवान को ज्ञान है। कल महाराज ये भी बता रहे थे कि सबके हृदय में भगवान परमात्मा अंतर्यामी रूप में होने के कारण पता है उनको, तुम्हारे बताए बिना, तुम्हारे कुछ भी बताए बिना भी गिरधारी को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जाहिर है हाल तुम्हारा उन्हें विपत बताए बगैर, ऐसा भजन में है, तुम क्या आकर प्रार्थना स्तुति वंदना कर दे, उनको ऐसे ही पता है, पता है ना, वो तो अंतर्यामी है तो पता है उनको, और क्या है वे दस जान। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, हमारे प्रति प्रेम है और हमारा उद्धार के लिए सब चेष्टा है उनकी, अवतार लेना या ग्रहण देना, इसके द्वारा हम भक्तों के लिए एक उत्साह मिलता है कि कृष्ण वास्तव में हमारे सुहृद है, और एक एक शरणागति लेने के लिए एक एक चॉइस, एक वरण करने के लिए एक पात्र मिलते हैं। कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा आप किसी देवी देवता या किसी व्यक्ति विशेष की आश्रय में शरण में जाते हो तो उनके लिए शास्त्रों में कहीं ये टाइटल, ये विशेषण नहीं दिया कि ज्ञान गण, उसे अपनी ही पता नहीं। मान लीजिए कोई देवराज इंद्र की शरण ले तो इंद्रदेव का पूर्व जन्म में क्या होने वाला बेचारा, उसका उसको पता नहीं, हमारा क्या करेगा भला, समझ रहे हो। भगवान ज्ञानमय है इसीलिए वे आश्रित है, आश्रय है सबके, शरण्य वे, हमें उनकी शरण में जाना है, क्यों, क्योंकि उनको पता है सब, वो ज्ञानमय है। गजेंद्र ने अपने स्तुति में इन शब्दों को बहुत विस्तार से दिया है, नमो ज्ञान घनाय च, गजेंद्र भी इसको कह, साक्षात ज्ञान घन है भगवान। लेकिन किसी और की शरण में जाने पर ना तो उसको ज्ञान है, और मान लीजिए ज्ञान नहीं है तो आप जाकर ज्ञान करा दो कि हमारा ये तकलीफ है, हमको मुक्ति चाहिए, तो ना वो समर्थ है क्योंकि वो प्रकृति के स्वामी नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं अध्यक्ष है ना, भगवान प्रकृति के ईश्वर है। चैतन्य महाप्रभु का शब्द है चैतन्य चरितामृत, कहां कृष्ण पूर्ण मायेश्वर, और कहां शूद्र जीव मायर किंकर, कहां ये तुच्छ जीव जो माया का त्रिगुणात्मय माया का किंकर बना हुआ है, और कहां कृष्ण जो पूर्ण माया के ईश्वर है। अब शरण किसकी लेनी चाहिए, इसीलिए महाप्रभु का भाव हम लोगों के लिए गाढ़ हृदय में सार है। मत प्राणनाथस्तु सैव ना अपर, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरे का कोई भरोसा नहीं, कब वही अज्ञानी हो जाए, कब बलहीन हो जाए, कब धनहीन हो जाए, और कुछ भी ना हो तो हरे कृष्ण हर मर तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई भी त्रिलोकी में कोई भी शरीर हो, कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के नित्य पार्षद जो बैकुंठ में है उनको छोड़कर, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा जो भी है, देवी महेश हरि धाम तेषु तेषु जो भी है, उसमें जो भी है उनका शरीर बदलना है, प्रलय के समय उनके धाम का नष्ट होना है। परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, भगवत धाम, भगवत लीला पार्षद जो बैकुंठ है वृंदावन, जिसके लिए न काल की कोई ना पहुंच है, न सूर्य चंद्र की भगवान कहते आवश्यकता है, और न उनको कोई प्रलय छूता है, नित्य धाम है। उनको छोड़कर सारे शरीर बदल जाएंगे, सारे लोग बदल जाएंगे, सब स्वाहा हो जाएंगे। अब उनकी शरण में जाकर हमारा भी तो स्वाहा होगा ना। इसीलिए भगवान के विषय में जब ये शब्द आते हैं ऐश्वर्यमय जो भी, तो हम लोग को वैश्य बुद्धिमान लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं ये है शरण लेने योग्य, जो ज्ञान है उनको पूरा, क्योंकि साक्षात ज्ञान में है। ये हम सरल अर्थ अर्थ बता रहे हैं जो समझ में बुद्धि पकड़ रही है। अब दूसरी बात इस श्लोक में है कि आप ज्ञानमय हो और अहम विमूढ़। अंशुमान कहते हैं कि आप साक्षात ज्ञानमय है और हम स्वयं विमूढ़ है, हम विमूढ़ है। अपने आप को ये अंशुमान जी विमूढ़ श्रेणी में रख रहे हैं। भगवद गीता में विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, जो विशेष रूप में अज्ञानी है, देहात्म बुद्धि में है। ऐसे भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर भी सप्तम स्कंद में राजसूर्य यज्ञ में अपने आप को कहते हैं कि मूढ़ है, मेरे जैसा मूढ़ कैसे तरेगा, दैन्यवश। कभी कभी हमारे वैष्णव आचार्य दैन्यवश अपने आप को मूढ़ अज्ञानी आदि कहते हैं, उनके लिए ये सत्य नहीं है। ऐसे ही अंशुमान जी के लिए भी यहां पूर्णतः अंशुमान विमूढ़ नहीं तो भगवान के स्तुति कर रहे हैं, उनको बता रहे कि आप ज्ञान घन है, आनंदमय है, मैं विमूढ़, वो उनका कुछ दैन्य है, लेकिन वो ऐसे दैन्यवश नहीं कह रहे हैं। हम लोग समझने के लिए कि भाई अंशुमान बहुत ऊंची स्थिति में है, क्योंकि भगवान कपिल देव के सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, उनकी साक्षात स्तुति कर रहे हैं, सूर्य वंश में वो एक राजर्षि है, उसका कुल ऊंचा है, बुद्धि ऊंचा है, उनकी अवस्था जो अब हम देख रहे हैं, और उनकी ये स्तुति के शब्द भी तो बता रहे हैं कि वो भगवत तत्व अभिज्ञ पुरुष है, लेकिन फिर भी वो विमूढ़ कह रहे हैं अपने आप को। अपने आप को विमूढ़ कहते हुए दूसरा गुण अंशुमान का है कि वो दूसरे ऋषि मुनियों को ज्ञानी बता रहे हैं। भगवान कपिल के तत्व को जानने के लिए या भगवत तत्व के विषय में यहां पर एक राम दे रहे हैं, सनंदनाद्ये मुनि भीर विभाव्यम। आपके विषय में तो जो प्रदस्त माया गुणभेद मोह, माया के द्वारा जो ये त्रिगुण है और उनके जो भेद है, उस मोह से मोह को जो प्रध्वस्त नष्ट कर दिए है स्वभाव से, ऐसे साधु पुरुष सनत सनातन सनंदन और सनक सनत दो और सनातन और सनंदन नाम रख रहे हैं यहां पर तीसरे कुमार का सनंदन का, और आद्य कहकर आर और चार कुमार में तीन, और टीका तात्पर्य बताता है नारद आदि मुनि भी तो उसी के समकक्ष, जो विरक्त महात्मा है, नष्ठिक ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद आदि, उनका नाम जिक्र किया जा समझा जा सके। वे सब सनकादिक मुनि और नारद आदि मुनि भी त्वाम ज्ञान घन भगवान कपिल त्वाम आपके आपके विभाव्यम। विभाव्यम शब्द का अर्थ श्रीधर जी कहते हैं कि विचिंतयन, आपका चिंतन करते हैं, आपके इस ज्ञान घन सच्चिदानंद स्वरूप का ये सनक सनातन आदि ऋषि मुनि चिंतन करते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बड़ा एक और अच्छा बात लिखते हैं इस पर, इस स्वभाव के ऊपर, कि ये सनकादिक मुनि स्वभाव से माया के गुणों भेद को प्रध्वस्त करके, जो विशुद्ध स्वभाव उनका है, उनके द्वारा ज्ञान घन आपको विभाव्यम आपको पूजते हैं, आपका चिंतन करते हैं, लेकिन स्वभावत न तु साधने। ये जो नारद आदि है या सनकादिक आदि है, वो अब इस जन्म में कुछ साधना करके शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति या चिंतन करते हैं, स्वभाव से ही है। पूर्व उसने इतना कि स्वभाव जैसे गुण कर्म स्वभाव है, जन्म के लिए भी गीता में है। अभी हम मान लीजिए जिस कुल में है, जो अवस्था है, जो स्वभाव है, उसका स्वभाव का कारण तो पूर्व कर्म ही है ना। लेकिन अब जो स्वभाव है वो है, ये जो अब नारद जी है या सनकादिक मुनि है विभातव्यम, तो स्वभाव शब्द पर विश्वनाथ जी लिखते हैं कि स्वभावत स्वतएव न तु साधने प्रद्वस्त गुण भेद मोहम। कोई साधना करके इस जन्म में उस अभी स्वभाव से है उन लोगों में, पूर्व जन्म का जो हो ये लोगों में। और एक आचार्य लिखते हैं इस पर वीर राघव, हम पढ़ रहे थे, वीर राघव जी ने दिया इस स्वभाव शब्द पर टीका। वो कहते हैं कि सनकाद्य मुनि भी विभाव्यम मतलब चिंतयन न तु दर्शयन, वो लोग भी आपका चिंतन स्मरण तो कर लेते हैं लेकिन आपका दर्शन तो वो भी कभी कभी नहीं प्राप्त करते। विराघव लिखते हैं कि यहां पर अंशुमान कर रहे हैं कि सनकादिक और नारद जी जैसे मुनि हे भगवान ज्ञान घन कपिल, जिसने स्वभाव से ही माया के गुणों को जीत लिया है, वे आपको विभाव्यम, विभाव्यम मतलब पूज्यम यथा चिंतयन, चिंतन करते हैं। लेकिन टीका देते राघव जी कहते वो भी चिंतन करते हैं न तो दर्शनीय, वो भी जब चाहे तब मिल ले दर्शन कर ले, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं मिला दर्शन उधर भी फिर दिया भगवान ने, वो अलग बात है, लेकिन वो भी उसके हाथ में नहीं है कि चलो भगवान को अभी पकड़ लो अभी देख लेते। वो तो उसको जब दिखना है तब देख, वही जाने जो देह जना है, वो जिसको दिखाना चाहे अपने को वो देखेगा। देखिए सनकादिक मुनि का नाम आया है और स्वभाव की बात यहां पर हो रही है। हम भक्तों के लिए चिंतन विषय का एक श्लोक भागवत में है, 1:3:6 24 अवतारों की गणना बताते हुए सूत जी ने नैमिषारण्य में स एव प्रथम देव कोमारम सर्गमास्थितम चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सनकादिक चार कुमारों को प्रथम अवतार बताया गया है 24 अवतारों में, और उस अवतार का प्रयोजन, सत्ताईस अवतार प्रयोजन ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया अपने जीवन में। ये इसके लिए भक्ति महारानी और नारद संवाद पद्म पुराण में भगवत महात्मय में लिखा गया है पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। ये जो चार छोटे छोटे हैं ब्रह्मा के प्रथम पुत्र, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से प्रथम, ये चार ही हुए ना, पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, जितने ही पूर्वज है उनके भी ये पूर्वज है। लेकिन पंच हायना है कैसे, 5 वर्ष की अवस्था में, बाल अवस्था में, क्योंकि युवान होने पर बड़े होने पर काम विकार आदि बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। बालपन में वो कोई काम नहीं होता, ना कोई स्वार्थ होता, ना कपट बच्चे में कुछ होता है। आप भी विचार करिए जब बच्चे थे ये सब गड़बड़ कब चालू हुआ अपने जीवन में, ये सब बच्चे थे तब तो कोई ये सब दुर्गुण नहीं था, ना काम बेकार था, ना कोई ईर्ष्या थी उतनी, थोड़ा जिद्दी हो गया कुछ लोग, कुछ बच्चे जिद्दी होते कि मारू मारा बाप नो तू जा, और उसके हाथ में आ गया रिमोट तो दूसरा कोई ले नहीं सकता, उसके हाथ में आ गया कुछ भी, तो जैसे जिद्दी होते हैं लेकिन स्वार्थी तो नहीं होते भाई, इतने काम ही तो होते ही नहीं, चलो है ना ऐसे। ये हम लोग की तरह नहीं है लेकिन एक विनोद के लिए हमारी अवस्था को भी लेते समझे समझते चले। बालपन में ना काम विकार सताता है, ना उतना कपट स्वार्थ होता है। फिर स्वभावतः कोई कोई पूर्व जन्म का होगा तो वो होता है, बालपन में भी होता है। अभी तो घोर कलयुग है, हम लोग देख रहे हैं कि 2.5-3 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि है जितनी हमको 12 साल के हुए तब भी नहीं थी। आज भी आप 40-50-25 बरस के आप मनुष्य को कोई मोबाइल दे दीजिए, हाँ तो उसको पूछना पड़ता है कहाँ से चालू करूँ कैसे, और किसी 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को दे दीजिए सब पता है उनको, ऐसे ही फंक्शन ढूंढ लेगा। और हम लोग को इतना 2-2 महीने के बाद भी हमको पता नहीं रहता कि इसमें क्या है, हम लोग इतने बुद्धिमान है। अब बुद्धि में बहुत एडवांस हो गए ये लोग, बच्चे लोग भी बहुत सब समझ जाते हैं, सब समझ में आता है उसको। हम लोग को पहले जब अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले अभी मिलान करें आज के ही 100 वर्ष की गणना में कि आज से 100 वर्ष पूर्व जो बुद्धि 15-20 साल के 12 साल के ऊपर के आज वो 2.5-3 साल वालों को है इन मशीनरी युग में देखा जाता है बड़े एक्टिव होते हैं। कितने बच्चे तो मैं ऐसे सुनता हूं कि उनको वापस डालना पड़ता है पीछे के स्टैंडर्ड में, बड़े हाइपर एक्टिव है, इसको एक स्टैंडर्ड पीछे डालो, आगे आगे बढ़ाने की जगह उसको पीछे डालना पड़ता है, इतने बुद्धिमान होते हैं। होते हैं कोई कोई सुकृतिवान कुछ ना कुछ कर्मानुसार, लेकिन ये दिख रहे हैं 5 साल के बालक, लेकिन व्यास जी कहते हैं कि पूर्वे शामति पूर्वजा और अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लेकर बैठे हैं। इन सनकादिक मुनियों के विषय में भागवत के तीसरे स्कंद में मैत्रेय जी ने बड़ा सुंदर वर्णन दिया है, जब वो वैकुंठ गमन करते हैं ये चारों कुमार जय विजय वाले प्रसंग में, उस वैकुंठ के दर्शन को करते हुए, वैकुंठ की शोभा को निहारते हुए और वहां जब पहुंचे तो ऐसे तो चिंतन ज्ञान घन थे, ब्रह्मलीन समाधि में उसका आत्मा रामश्च मुनयो, इसमें इनका स्थान है, अपनी आत्मा में रमण करने वाले ये है, लेकिन भगवत विग्रह भगवत धाम की अनुभूति तो वहां जाकर इनको हुई। जब भगवान विष्णु उनके समक्ष आए उस जय विजय का पक्ष लेते हुए, याद रखना चाहिए उनका पक्ष लेते हुए भगवान आए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मेरे है और इनकी गलती मेरी गलती है, मतलब तुम पराए हो। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये दूत किसके है, और उसके मेरे कहना मतलब उसको तो कह ही दिया ना, तुम भले श्राप दिया जो भी, लेकिन भगवान ने अपना तो दूतों को कहा कि मेरे दूत बोल तुमको रोक लिए भाई साधु ऋषि। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के श्री अंग में जो तुलसी दल होता है, जिसमें कपूर केसर मिश्रित चंदन मिश्रित ठाकुर जी के चरणों में तुलसी का निवास है, और उसकी सुगंध जैसे ही घ्राणेन्द्रिय में गई इन इन कुमारों के, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, गोस्वामी ने लिखा मुक्ति के फेरे को छोड़कर अब भक्ति में मस्त बन गए हैं, भगवत विग्रह के लोलुप बन गए अब, जैसे जनक राज जी का हुआ, मानहु ब्रह्मानंद सब ब्रह्मानंद में लीन, विदेहराज जनक जब राम जी को देखे जनकपुरी में तो सारी ब्रह्मताई चली गई, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, जब मनोहर रूप देख ही लिया, जब तक ये नहीं देखा था तब, अरे इस भगवान को देख ले, जैसे सनत कुमार अब देख ले, विदेहराज ने राम जी को देखा, देखने की बात छोड़ो, सुखदेव जी ने भागवत में लिख दिया कह दिया है कि उरुक्रम इस भगवान कृष्ण के विषय में कोई सुन भी लेगा ना तो निर्ग्रंथ अभी जो निर्ग्रंथ महात्मा है ये सब आत्माराम भी इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान श्री कृष्ण के लीला माधुरी गुण इतने मधुर है कि इसको सुनने वाला भी सब ब्रह्म भ्रम छोड़कर सब महामंत्र रटता रह जाएगा यमुना के किनारे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा परम किम तत्त्वम अहम् न जाने, मधुसूदन महाराज लिख दिए, देख लिया जब उस कन्हैया को या उनकी बांसुरी सुनने मिल गई या उनका कहीं वर्णन सुनने मिल गया तो सुखदेव जी कौन है ये बरहा पीड़म को सुनते ही, ऐसे है ना आत्मा रामश्च निर्ग्रंथो, भगवान कृष्ण के गुण को कोई सुनकर रह नहीं सकता उनके देखे बिना, उनकी भक्ति के, उनको जिसने देखा नहीं उनके विषय में सुना नहीं उन मूर्खों की बात छोड़ो, वो किसी को भी रटते रहते हैं, किसी को भी पूजते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनसे मतलब नहीं है। इन महात्माओं को देखो, इन महाजनों को देखो, क्या दशा है, क्या वर्णन है। अरे योग सब योगेश्वर माने जाते हैं, एक रूप में भगवान महादेव, जिससे बड़ा बैरागी कोई नहीं है और जिससे बड़ा वैष्णव का गुरु शास्त्र में कोई नहीं है, वो भी जब कृष्ण की बंसी बजती है या उनकी लीला चलती है तो समाधि छोड़कर चलते हैं गोपेश्वर जी भी, गोपेश्वर भी गोपिताई निकल जाती है, है ना, कृष्ण कृष्ण है ये, कुछ भी थोड़ा स्पर्श होने पर। देखिए घ्राणेन्द्रिया, हम सुनते हैं अम्बरीश महाराज के साधना चरित्र में कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है, श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पित है, उनके चरण कमलों में अर्पित किए गए हुए पुष्प को वो सूंघते थे और उसके चरण तुलसी को वो सूंघते थे, स्वादिष्ट करते थे, जीवा से चखते थे, ये भक्ति है। यहां पर कोई भारी साधना ये सनकादिक मुनि नहीं किए है, लेकिन उस तुलसी दल की मिश्रित सुगंध से सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जैसे तो मूल प्रसंग सुना रहे हैं कि वो भक्ति में मस्त बन गए ये चारों। और तब ये 5 वर्ष के बालक, ये प्रथम अवतार, ये सनकादिक 4 कुमार जिनकी शक्ति के विषय में लिखा है कि उस द्वारपाल, उस वैकुंठ के दरवाजे पर वो 2 कुमार को 4 कुमारों को केवल वो दोनों ने कहा कि रुक जाइए, तब तो थोड़ी भ्रिकुटी हिल गई। क्या बोला? उसको डाला नीचे। यस्या भ्रुभंग मात्रेण, पद्म भक्ति महात्म्य में लिखा है, भगवत महात्म्य, जिसकी भ्रुभंग, केवल भ्रुकुटी हिल गई थोड़ी, क्या बोला रुकने को, उन दोनों को यद गतवान निवर्तन्ते को डाला नीचे। ये हम अलग अर्थ से बता रहे हैं, जब भगवत अर्थ कुछ और है, लेकिन प्रसंग को जब जो महात्म्य बताना है सनका दिक्कत हो तो ये सत्य है ना कि उन्होंने गिराया नीचे। चलो कोई गिरता नहीं है, वो तो पूछा है युधिष्ठिर ने भी कि ये कैसे हो गया ये घटना, क्योंकि कोई आता हो तो भगवत इच्छा थी, भगवान को वीर रस का आस्पद, वो सब है छोड़ो, कई टीकाओं से तात्पर्य से तुम चिंतन करते रहो, लेकिन यहां तो हमको ये दिख रहा है कि इनकी थोड़ी सी हिल गई, इनको डाला नीचे। 2 पार्षद जय विजय जो भगवत शरीर में थे सच्चिदानंद, और उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, जय विजय तो जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे उनका स्वरूप है, और उन लोगों को भी वैकुंठ से नीचे डाल दिया जिसकी थोड़ी भ्रिकुटी हिलने पर, तो दूसरे को तो क्या कर सकते हो, छोटे छोटे है लेकिन भाई बड़े खतरनाक है, हिला दिया जाए उसका तो मगज आउट हो जाएगा। और तब तो ये वैष्णव नहीं बना, अभी विष्णु की शरण आएगी सुगंध तब होगा। तो लीला से तो पहले यही समझ लीजिए कि शक्ति तो है भाई नीचे गिराने की इन लोगों को, इनका श्राप कुछ काम तो करता है, तो हम भी बोले चल भाई निकल जाओ, हमको निकाल देते ये लोग, वो तो निकलता नहीं, हमारे जो कोई है ही नहीं वैल्यू। अब इनकी वैल्यू देखो आप कि उसको नहा से गिरा सकते हैं, श्राप तो दे सकते हैं, और वो भी रखना पड़ा, अब क्यों रखना पड़ा उसके कारण ढूंढते रहो तुम लोग, लेकिन ये तो हुआ ना। लेकिन फिर भी जब विष्णु चरण तुलसी का सुगंध प्राप्त किए, तब बड़ा मार्मिक वर्णन इन सनकादिक मुनियों के विषय में हां व्यास जी ने दिया है कि लीला कथा रस उन्मत्ता, लीला भगवान की कथा रस में उन्मत्त होने लगे ये चारों कुमार, और कथा मात्रे का जीवनम, भगवान की कथा ही इनकी प्राण बन गई इन कुमारों की। उसी भक्ति महात्म्य में लिखा है कि ये चारों कुमारों का वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिख दिया कि लीला कथा रस उन्मत्ता कथा मात्रेक जीवनम, सदा वैकुंठ लीलया हरि कीर्तन तत्परा। सदैव वैकुंठ बिहारी की लीलाओं में जिनका चित्त वृत्ति निमंजित रहता था, और हरि कीर्तन तत्परा, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हरि के नाम का कीर्तन करते रहते थे। लीला कथा रसमत्ता कथा मात्रे कजीविना, भगवान की लीला कथा में ही उन्मत्त रहते थे, खोए रहते थे, जैसे हम कभी ख्यालों में खोए रहते हैं ना पागल, ऐसे ही कथा में खोए रहते थे, उन्मत्त रहते थे। जैसे हमारे गोस्वामी, हाय राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, कहां हो आप, श्री गोवर्धन तले, कल्प पादप तले, कालिंदी के तट पर कहां हो, घोषंता विति सर्वतो व्रजपुरे खिरदे महाविहवलो, वंदे रूप सनातनो रघुजगोसी जी को, राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे न मत्तालिको, उसमें मत रहते थे ये लोग, ऐसे ये भी भगवत कथा में मत रहते थे, और कथा ही जिनका प्राण हो गया था, कथा मात्र एक जीविनम, कथा जीवन है, जीविका नहीं, आज जीविका बन गई है कलयुग के सारे व्यासों की। इस पर बैठ जाते मतलब श्लोक तो कहता है कि व्यासा है विष्णु रूप, ये जो है विष्णु के ही रूप है, तो जनता तो बेचारी शास्त्र को फॉलो करती है, पूजती है व्यास स्वरूप कर, और ये तो स्वयं को व्यास से बड़ा समझने लगते हैं प्रभु जी। और व्यास वृत्ति है नहीं, क्या व्यास जी की वृत्ति ऐसी थी कि लोगों से कथा कह के पैसा कमा लिया जाए, पद ले लिया जाए, हाँ चेला बना लिया जाए, ये किसकी वृत्ति होती है जानते हैं? वह ऊपर से एक शब्द है बड़ा भद्दा खराब, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, ढाई अक्षर का, उसको इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, आप समझ लेते ये वृत्ति हो जाती है, व्यास वृत्ति नहीं रहती। दूसरों का धन छीनना और दूसरों का चित्त चुरा लेना, ये किसका काम है? एक है एक समाज में ऐसी एक जो करती है, वो वृत्ति आ जाती है। और व्यास वृत्ति सबका हित करना, सबको कृष्ण कथा देकर भक्ति पवित्र बना देना जीवन, ये कहां रहा? ये बड़ी दुर्गति है। कथा कर्ण मात्रे न कथा सारस ततोगत, कारिता कर्ण लोभे न कथा सार सतोगत, कर्ण के लोभ में कथा का सार कलयुग में निकाल दिया है इन लोगों ने, एक फैशन बना लिया, एक बिजनेस बना लिया है आजकल। इसीलिए बड़े सावधान होना चाहिए गौड़ीय भक्तों को, प्रभुपाद जी के मिशन में जिनका स्थान है उसको देखना चाहिए, नहीं तो कौन कौन ऐसा वीर, कौन ऐसा ज्ञानी, कौन ऐसा बुद्धिमान है चैलेंज करता है हमारे शास्त्र कि जिसको पद मिल जाए और ज्ञान मिल जाए और बहक न जाए। अगर गुरु वैष्णव शास्त्र के अनुगत में नहीं रहा, एक मिनट नहीं लगेगा उसको फ गिरने में, प्रतिष्ठा धन के लोभी बनने में और अहंकारी बनने, एक मिनट नहीं लगेगा उसको, चाहे कितना हो आचार्य हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, क्योंकि माया कैसे, उसको तो थोड़ा द्वार चाहिए बस, हवा के लिए कुछ चांद चाहिए, जैसे भी हवा खींच घुस जाती ना, होती है व्याप्त ही है, इससे भी सूक्ष्म है ये। और फिर क्या हो जाता है मालूम है? हमारा पतन हो रहा है और हमें लगता है कि हमारी प्रगति हो रही, पतन में प्रगति बुद्धि करा देती है और हमको लगता है कि मैं राइट हूं, मैं ही अच्छा हूं, बराबर हूं, ये बुद्धि आ जाती है। इसीलिए सेवा भाव से और जो सुने हैं शास्त्रों से गुरुजनों से, उसमें कुछ मिलाए घटाए बिना, अपना कुछ मच्छी मसाला डाले बिना, सरलता से सेवा के रूप में वैष्णव को देना है कथा। और ये भी ये जानते हुए हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो श्रोता है ना, वो आपसे कहीं ऊंचे है वक्ता, क्योंकि भगवत कथा में उनकी प्रीति है और भगवान से प्रीति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए स्वयं ज्ञानी भक्त वैष्णव होते हुए भी वो भागवत और कथा से प्रेम करते हैं, इसलिए बैठते हैं। और हम समझ लेते हैं कि सब हमारे नीचे है, हम ही ज्ञानी, हम सबको सिखा रहे, समझा रहे, उपदेश करने में तो बहुत कुशल सब लोग हैं, ये महानता नहीं है। देखो, विद्वत्ता बहुत जगह होती है, दुर्लभ विद्वत्ता नहीं है, दुर्लभ है साधुता, वैष्णवता। बोलता आ गया तो बोलने लग गया वो महान हो गया, ऐसा नहीं होता। आज ये मूर्खता चल गई है कि जो बोल रहे वो महान है, नहीं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो बोलना नहीं जानते लेकिन फिर भी बहुत सेवा करते हैं, बहुत साधना करते हैं और बहुत शुद्ध है और हमसे कहीं आगे होते हैं। बोलना आ गया मतलब महान हो गया, पंडित गिरी, ऐसा नहीं होता। जिसके जीवन में वैष्णवता है, समर्पण है, साधुता है, वो महान है, फिर भी एक अक्षर भले न बोले वो है, और कितना हो श्लोक झाड़ दे अच्छे से राग रागे कुछ भी, लेकिन अहंकार का पुतला बना है, ना कोई समर्पण है ना भक्ति है, और कुछ फिर दूसरा ही लग गया है जो अभी पहले वर्णन किया है, ऐसा तब क्या वैल्यू है बताओ। इसीलिए भक्तों के लिए हम ये नेगेटिव बात इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी विषय हो उसको दोनों रूप से समझना होता है, कैसे नफा होगा और कैसे नुकसान नहीं होगा, वो बिजनेसमैन आगे बढ़ता है ना, दो काम में नफा कर रहा है, एक में नुकसान होता है, ऐसे ही रहेगा तो इसलिए नेगेटिव भी समझना चाहिए। यहां पर बात बताई जा रही है कथा मात्र के जीवन, हम वैष्णव के लिए कथा ही कहना है, कथा ही सुनना है, लेकिन वो हमारा जीवन है, वो हमारा प्रेम समर्पण है, उसके फेरे में हमको कुछ चाहिए नहीं, नहीं तो फिर जगन्नाथ तकम जैसे हम पिछली बार भी क्लास में बताए थे, केवल गाते रह जाएंगे, नवे याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभव, क्या गा रहे हो और क्या सोच रहे हो, हमको राज्य नहीं चाहिए, ना हमको कनक, कनक माने गोल्ड ना कुछ नहीं चाहिए, फिर वो ये काम नहीं करेगा तो पिछला श्लोक फिर काम नहीं करेगा। हरत्वम पापा नाम दूतरम असारम, मेरा संसार हरिए मेरा पाप हरिए। जगन्नाथ जी बड़े अभी कहा ना ज्ञान घन, सब जानते तुम बोल क्या रहे हो अंदर से सोच क्या रहे हो, हमको उल्लू बना रहे हो। तुम आजकल के दूसरे वैष्णवों को गुरुओं को उल्लू बनाओ, क्योंकि जिसको तुम उल्लू बना पूरी दुनिया को मैं उल्लू बना रहा हूं भगवान का, छलम छल जाता हूं तो सारा को मैं चीट, तुम मुझे चीट करने आया इधर, चलेगी नहीं भैया। जिसका चरणों में हम बैठे उनके पास तो हमारी कुछ चलेगी, हम सोचते नहीं उसके पहले उसको पता चल जाता है, अब क्या करे ऐसे व्यक्ति से बचे कैसे। इसीलिए सरल बनने में लाभ है, निर्दोष बनने में, स्पष्ट सत्य कहने में बड़ा लाभ है इस राज्य में। नहीं तो हम ही फंस रहे हैं, समझिए हम ही जाला बना रहे हैं। कथा मात्रिक जीवनम, हम ये बताना चाहते हैं आप वैष्णवों को, सनकाद्य मुनि भी यहां पर अंशुमान कहते हैं कि ये सनक चार कुमार जो है ये मुनि लोग, मुनयो मननशीला। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर मुनि शब्द आत्मारामस्य मुनि की व्याख्या में एक बड़ी कई अर्थ बताए हैं, लेकिन हम एक बार महाराज से सुन रहे थे तो जो याद आ रहा है, वो कहते थे मुनि मतलब मौनी, मौन रहना ही नहीं, मुनि यथार्थ भाषण, जो शास्त्र के अनुसार यथार्थ विषय सोचता है और बोलता है। और प्रभुपाद के उपदेशामृत प्रथम पैराग्राफ तात्पर्य में भी मौन रह जाना ही महानता, महामंत्र बोलना बकवास प्रजल्प न करना ये महानता है, है ना, जो वास्तविक शब्द है बोलना। मुनि शब्द के अर्थ हमारे आचार्य जो ने जो दिए हैं वो कम से कम हमें पता होना चाहिए, जो कृष्ण लीला चिंतन मनन में मस्त हो, जिनका चित्त मुनि। और मौन शब्द से शास्त्र भगवत कथा कीर्तन बोलने में जो मस्त हो, या फिर यथार्थ जो शास्त्र सारांश है उसको बोलता है, अपने मन से बकवास कुछ नहीं करता। लेकिन आजकल लोक में मुनि शब्द को जो मौन एकदम चुप हो, या फिर कोई कोई भगवत को भगवान को निराकार बोलने वाले भी मूर्खों को भी मुनि सब टाइटल देते हैं, लोग करते हैं, एकदम बिल्कुल बिना कपड़ा पहने जो घूमता है उनको भी मुनि कहते हैं। हम लोग अभी जा रहे थे जुहू परसों कथा ना, तो वही एक पूरा निकल सामने बोल गया, मैं बोला चलो आंखें बंद कर लो, कलयुग में यही मुनि लोग बचे हैं। ये सब मुनि, ये सब पाखंड है कलयुग का, बचना है हम भक्तों को। और इसीलिए इस पाखंड से बचने के लिए ये सूर्य समान भागवत दिया है, पुराण अर्को जनोदित, और इसको नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो यही इसी में मन फंस जाएगा फिर। और फिर हमारी जो निष्ठा साधना सेवा धन देना दान देना ये सब गुण दुर्गुण में बदल जाएंगे अगर दिशा सही नहीं रही तो। ये लोग भी दूसरे जो पाखंड में लगे हैं तो क्या वो लोग दान नहीं करते? आप क्या सोचते आपसे ज्यादा दान करते वो लोग तपस्या नहीं करते? बहुत तपस्या करते, लेकिन सब बेकार हो जाएंगे। तुमको जाना है उधर, पकड़ लिया उल्टी दिशा, कितना दौड़ो और दूर जा रहे हो। इसीलिए पहले तो स्थान दिशा नक्की करना सही क्या है, और उसके बाद चलो दौड़ो तुम्हारी बुद्धि, लेकिन दिशा तो राइट होनी चाहिए ना। उल्टी दिशा में दौड़ोगे उतना मरोगे, इतना दूर जाओगे तुम। इसीलिए भागवत के आश्रय में रहना है, गीता के आश्रय में रहना है हम भक्तों को। सनकाद्य मुनि भी के विषय में यहां कहा जा रहा है, कथा मात्र, कथा ही उनका जीवन था। इन सनत कुमारों के चरणों में नारद आदि ये सब वैष्णव आचार्यों के, ब्रह्मचारी साधु संतों के, उद्वरेतस नैष्ठिक इन साधुओं के चरणों में हमें अनुनय विनय कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो शक्ति दे, वो ज्ञान वो भक्ति दे कि हम भगवत तत्व को अर्जन कर सके। ये सब भगवान को समझे पकड़े हुए मुनि है, इसलिए अंशुमान इस बात को जानते हैं कि स्वभाव से ही जिनको कोई रुचि नहीं माया के गुणों के विकारों में, नारद जी को या मुनि इन सनकादिक मुनियों को, सत्व रजस से तमस इनका चित ऊपर उठा हुआ है, और ये मुनि भी विभाव्यम आपकी चिंतन स्तुति करते हैं। और कथम परिभावयामि, मेरे जैसा मूड कैसे आपको स्तुति कर सकता है? अंशुमान अपने को क्या कह रहे हैं? विमूढ़। मेरे जैसा विमूढ़ अहम विमूढ़ कथम परिभावयामि, मेरे जैसा मूर्ख विमूढ़। विमूढ़ का अर्थ प्रभुपाद जी यहां पर करते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध। अभी अनुवाद हम आप पढ़ा रहे थे आपको तात्पर्य शब्दार्थ, ऐसा कथम परिभाव कैसे आपको समझ सकता है? तो ये प्रत्येक वैष्णव की स्तुति का सार रहा है कि सुंदर सुंदर स्तुति भगवान के तत्वत स्वरूप से ऐश्वर्य से यथार्थ करते हुए भी वो अपने आप को मूर्ख अज्ञानी बताते, जैसे कुंती महाराज कथम पश्येम ही स्त्रिय, अपनी स्तुति में वो कहती है कि योगी नाम अमला, बड़े बड़े मुनि योगी आपकी स्तुति करते, कथम मेरी जैसी एक स्त्री अबला जिसकी बुद्धि ऐसे ही नहीं कम होती है, कैसे मैं आपको अब समझने में तो कोई बात ही रहा नहीं था। नमस्य पुरुषम, सब समझ गए थे, परम पुरुष आप हो, माया गुण से परे हो, नटो नाट्य धरो यथा, सब बढ़िया से बढ़िया श्लोक बोल दी शुरुआत में ही, और तुरंत फिर कहती है कथम पश्चिम ही स्त्री, मेरी जैसी स्त्री आपको कैसे समझ सकती, अरे आप ही सबसे बढ़िया समझी हो, इसलिए सारी जटाधारी ये गंगा तट पर और वो गोमती के तट पर 88,000 आपकी स्तुति को गा रहे हैं, ये सब साधु लोग तो आपकी स्त्री जो स्तुति की उसको गा रहे हैं। अरे स्त्रियों ने खूब समझा है भगवान को, हस्तिनापुर की नारियों ने समझा है कृष्ण को, जनकपुर की स्त्रियों ने समझा है भगवान राम को, आप पढ़िए रामायण और पढ़िए मथुरा की स्त्रियों की कथा और ब्रज की गोपिकाओं को, नारद जी ने यथा ब्रज गोपिका नाम जो सबकी गुरु बता दिया है, कृष्ण को सबसे ज्यादा समझिए स्त्रियां, ऐसा नहीं है, बस भक्ति होनी चाहिए। यहां तक कि नाग पत्नी और द्विज पत्नी अभी भगवत प्रेम को पा गई, कविराज जी के शब्द हमें बताते हैं, नरोत्तम दास का ना वो भजन, कविराज जी का ही नरोत्तम आया, नरोत्तम दास ठाकुर का जय जय द्विज पत्नी नाग कन्या गण भक्ति ते हर पहलो गोविंद चरण, स्त्रियां भी समझी है। और ये सब स्त्रियों की जो मैं बात अभी कहा, जिसकी स्तुति शास्त्र में भागवत में है और उस स्तुतियों का गान पठन अध्ययन चिंतन विचार ये सब मुनि करते हैं उस तट पर बैठे हुए, कितना ऊंचा तत्व समझी है कुंती महाराज, फिर भी दैन्यवश कहती है कथम पश्चिम स्त्री। यहां पर अंशुमान का भी यही थोड़ा भाव से सामंजस्य हो रहा है कि आपके विषय में तो ये सनकादिक मुनि लोग चिंतन करते हैं, मेरे जैसा विमूढ़ आपके विषय में क्या समझ पाएगा, क्या चिंतन कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही बताया सार रूप में, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं त्रिगुण्यो विषय आवेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, अर्जुन शास्त्र में हम पढ़ते सुनते अनुभव भी कर रहे हैं गुणों को, इन गुणों के प्रभाव को, अपने चित्तवृत्ति को एक वैष्णव साधक को चाहिए कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठाए। तीनों गुणों से ऊपर पुरुष के क्या लक्षण है उसको भी 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है अर्जुन के पूछने पर, और तीनों गुणों का क्या तारतम्य कैसे काम करते हैं उसका विशद वर्णन 14वें अध्याय में कृष्ण ने किया है भागवत में गीता में, तो पढ़ना चाहिए हम भक्तों को तीनों गुणों के तत्व को और कैसे इनसे मुक्त हुआ जाए वैष्णव से सुनना चाहिए, और फिर पूर्ण प्रयास करना चाहिए अपने आप को गुणों से मुक्त करके भगवत उन्मुख रखने का। श्रवण कीर्तन सार है महाप्रभु के शब्दों में, भक्ति के अंगों में, और उसमें हम लगे रहेंगे तो अनायास ही इन गुणों से छूट जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि विधि नहीं पता होने पर भी सार मिल जाता है, हम ऐसे बिजनेस में कई लोगों को मिले हैं और देखे हैं कि वो नहीं जानते हैं ज्ञान फिर भी पैसा कमा रहे हैं। डायमंड के क्षेत्र में हम देखे हैं कि किसी को पता नहीं है कैसे लिखता है कैसे बनता है फिर भी वो कमा रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा जिनको सब पता है कि ऐसे बनता है इतने का वो कमा ही नहीं रहा, ये फिर बार आके जी ऐसा होता है ना, उसको उसको पता नहीं है कैसे बना कहां से निकला कहां इंपोर्ट होगा कहां है, फिर भी उसमें से वो पैसा कमा रहा है, और एक व्यक्ति को पूरा ज्ञान है कि इधर आता है ऐसे जाता है भवा तुझ कर वो नहीं भी वो कमा नहीं रहा क्या कहा ऐसा होता है, सब क्षेत्रों में ऐसा होता है, इस भक्ति राज्य में भी ऐसा है। कभी कभी कुछ भक्तों के जीवन में कृपा से हम देखते हैं कि शुद्ध भाव है समर्पण है और सेवा में गुरु आज्ञा में लगे हैं, उनको ये गुण तत्व फिर भी गुणों से मुक्त है, और कुछ ज्ञानियों को आप देखिएगा बड़ा प्रवचन झाड़ देते हैं गीता में ये गुण ऐसे, लेकिन देखा जाता है कि पूरा गुणों का तू मूर्ति है रजस तमस का पूरा, और प्रवचन में तो सब पता है उनको रजोगुण कैसे काम करता है तमोगुण कैसे काम करता है, लेकिन उनसे मुक्त नहीं है, क्या कारण, समर्पण नहीं है। कृष्ण की कृपा कृष्ण की सेवा भक्ति करने पर ज्ञान वैराग्य हो जाएगा, सारे गुण अपने आप छूट जाएंगे, जहां कृष्ण है वहां माया है ही नहीं, लेकिन कृष्ण को छोड़कर फिर आप केवल पंडित ध्यानी ज्ञानी इनकी दशा के लिए कोई फिक्स नहीं है वो गुण ऐसे ही। तो हम लोगों को इसलिए बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, सार जप करना है, नियमों का पालन करना है, सेवा में लगे रहना है, साधना में। तो कैसे छोड़, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये बता रहे कि नहीं पढ़ना नहीं जानना है, पढ़ना सुनना समझना है और मुक्त होने का प्रयास करना है, लेकिन साथ साथ में हमें हमारा लक्ष्य पता है कि इनसे मुक्त होने का है भक्ति है, भक्ति करने पर वो अपने आप हो जाता है। तो भक्ति में लगे रहेंगे तो माया अपने आप छोड़ देगी, कृष्ण की दासी है वो, और जहां कृष्ण है वहां रह नहीं सकती, और कृष्ण वहां है जहां उनका नाम है, उनकी कथा है, भगवान कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार ही उसके नाम के रूप में, उनके हम संग में रहेंगे तो बच जाएंगे इन सारे दुर्गति दुर्गुणों से, प्रकृति के गुणों से, और भगवत चरण विंद की प्राप्ति कर सकते हैं हम लोग वैष्णव साधु संग में। तो बस ऐसे कोई खास नहीं था, मैं सुबह केवल दो पांच बातें पढ़ा टीका से, उसको मैं निवेदन किया आप वैष्णव की चरण सेवा में। भागवत बहुत सार गर्भित समाधि भाषा है, हम लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है कि इन श्लोकों के सार तत्व को इतना पकड़ सके, लेकिन जितना गुरु वैष्णव कृपा से सुना समझा बताया, इसमें त्रुटि भी होगा आप वैष्णव लोग, और पूछना चाहिए भक्तों से, स्वयं भी पढ़ना चाहिए तात्पर्य श्लोक चिंतन, और समर्पण भाव से शुद्ध मन से चिंतन करने पर गुरु वैष्णव कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। जितना हम कपट छोड़कर निर्मत्सर भाव से श्रद्धा से भजन करेंगे ना, उतना ही शास्त्र हमारे सामने प्रकट होता है, अर्थ खोलता है। तो हमें बस ये प्रयास, हमारा ये प्रयास है। तो कुछ त्रुटि हो तो आप वैष्णव लोग हैं क्षमा करिएगा और पढ़िएगा, बस सनकादिक मुनि को याद किए, कपिल देव को थोड़ा याद किए, अंशुमान की दैन्यता या उसके सामंजस्य, कुछ प्रसंग कुछ श्लोक जो स्मृति में आया वो बताया, बाकी आप सब वैष्णव ज्ञानी हो सब, तो आशीर्वाद दीजिए कि बस ऐसे ही लगे रहे प्रभुपाद के इस मिशन में, उत्साह पूर्वक श्रवण कीर्तन में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। और कुछ प्रश्न हो या कुछ टीका कमेंट, प्रभु जी कुछ एक ये पहले पूछ लेते हैं, ये साधु किसे कहते हैं, साधव साधु भूषणा की व्याख्या में चक्रवर्ती बाद लिखते हैं साधु शास्त्रानुवर्तिना, जो शास्त्र के अनुसार चले वो साधु है। ऐसे साधु शब्द की अपने अपने स्थान पर बहुत बड़ी व्याख्या है, विनम्र होते हैं, कपट नहीं करते, सरल देहाती भाषा में हम बताते हैं, लेकिन ये सारी बातें एक शब्द में आ जाती है कि जो शास्त्र के अनुसार, नहीं तो ऐसा भी लिखा है साधनोती इति साधु, जो साधना करते हुए दूसरों को भी साधना में लगाए वो है साधु, सरल है वो है साधु, जो सीधा है सरल है वो है साधु। लेकिन हम तो शास्त्र से अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्याख्या होती है, तो हम यही बताएंगे कि जिसका चरित्र व्यवहार शास्त्र के अनुसार हो वो है साधु, और फिर अपने अपने स्थान पर अजात शत्रु उसमें भी दिया है, और कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागे तो वो कपिल देव ने उसको बड़ा वैष्णव साधु बताया है। तो चिंतन अभी नहीं है उस शब्द पर इतना, तो इतने से ही संतुष्ट रहिए। बताइए तो एक इनका पहले था एक दव्य सम्य सुयोषित, हाँ
बाप रे
बड़ा सुंदर याद कराए प्रभु जी पूछ रहे कि साधु किसको कहते हैं, तो ये साधु वास्तव में साधु है आज के युग में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपिचेत्स दुराचारो, कोई व्यक्ति अपने स्वभाववश दुराचार में लगा है, शास्त्र से विरुद्ध कर्म में लगा है, लेकिन सम्यक भगवान कृष्ण को मानते हुए उसकी बुद्धि भगवान की भक्ति में या भगवान में स्थित है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहा है, दुराचार कर रहा है, गलती कर रहा है, और आप लोग उसको साधु माने तो आप साधु तो सार तो यही निकला कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा, भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है वो फिर कुछ कुछ कर लेता है, बेचारा स्वभाव है, फिर भी उसको साधु रे वच मंतव्य, तो हम लोग के लिए लागू होता है कि उनको भी साधु माने। अच्छा याद दिला, धन्यवाद। यस प्रभु जी, ललिताज प्रभु कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले वो भगवत चिंतन में ही थे, लेकिन ऐसा शास्त्र बताता है कि वो भगवत ब्रह्म जो है, भगवान भगवान तीन फेज है ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो वो अपने आत्मा में भविष्य भोगों से वो उन्मुख थे, लेकिन भगवान की कथा कीर्तन भक्ति सार तत्व जो है, मूल तत्व, तो उसमें उनका चित्त उतना नहीं था। ऐसा रामायण और ये भागवत का प्रसंग बताता है कि उनके पहले वो ब्रह्म में लीन रहते थे, आत्मा में रमण करते थे, ब्रह्म तत्व को परमात्मा तत्व को पकड़ते थे, लेकिन भगवत भक्ति अनुष्ठान जो है, भक्ति में ये श्रवण कीर्तन प्रेम, उसमें उसकी स्थिति उसके बाद प्रकाशित हुई। ऐसे स्वभाव से ही वो भगवत शक्ति प्राप्त जीव है, जो पहले ने बताया कि वो प्रथम अवतार में उसको गिना गया, शक्ति प्राप्त जीव है, कोई साधारण तो है नहीं, लेकिन पूर्णतः उसकी चित्रवृत्ति माया से परे है, और उसकी शक्ति भी है बालक रहना। देखो हम लोग चाहे तो भी बालक नहीं रह सकते, हमको भी बालक ही रहना है, लेकिन वो तो ही दौड़ाऊं करूं हम, वो प्रकृति को जीते हुए है, जीते हैं तभी तो बालक रहे हैं ना, नहीं तो न चाहते हुए कैसे रह जाते बालक, हम लोग नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ शक्ति प्राप्त है, आत्मा में रमण करते थे, ब्रह्म समाधि में रहते थे, शुक जी के विषय में, शनकादि के विषय में ऐसा कहीं कहीं हमें सुनने मिलता है, और फिर भगवान को देखकर या भगवान की कथा सुनकर पूर्णतः भगवत भक्ति में वो निमग्न हो गए। तो उसके पहले ब्रह्म में, आत्मा में, अपने आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में ही करते थे, लेकिन भक्ति के इतने लोलुप बाद में हुए, ऐसा बता रहा है वो प्रसंग। और भी कुछ? यस, ये बताएंगे पहले आप। अरे ये तो हम भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे। बड़ी समस्या है हम वैष्णव के जीवन में कि हम समझ गए गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से साधना में मंगला में आना है, एक स्थान पर बैठकर जप करना है, वैष्णव के संग में कपट छोड़कर सेवा समर्पण करना है, चाहते हुए भी नहीं हो रहा है, अनिच्छन अभी वाष्णव बड़ा दिवन नियोजित, अर्जुन भी कह रहा है कि मैं नहीं चाह रहा हूं, फिर भी क्यों हो रहा है। अभी देखो इसमें बहुत कारण हो सकते हैं। एक तो आपसे हमारा दोष बाद में बताना चाहिए, पहले तो प्रकृति को ही दोष दे देते हैं कि गुणों के प्रभाव है भाई, सत्व रजस तमस, फिर कलयुग को दोष दे दो, समय का मंद मन आलस, वो है ना सब, मंद भाग्य मंद कैसे है, हाँ मंद सुमंद मतयो, एक तो मंद है उसमें भी सुमंद बुद्धि है, आलस है मतलब, और तमोगुण का प्रभाव है आलस है निद्रा है, तो प्रकृति को दोष दे दिया नहीं आने में मंगला में गुणों के प्रभाव का, दूसरा कलयुग काल को दोष दे देते हैं समय को कि उनका दोष है, फिर हम हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है उसको दोष देंगे कि भाई उस प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर बना है और जो स्वभाव बना है तो उसके कारण हम चाहते नहीं, मतलब हो नहीं पाता, आलस है या जो भी प्रकृति गुणों से वशीभूतिक प्रारब्ध प्रेरित करता है, तो नहीं आने के पीछे ये सब बताया जाता है कि प्रकृति ये वास्तव में हम स्वयं कारण है, हमारा दुष्ट मन कारण है, हम आलसी या इस भगवत गुरु आज्ञा को सीरियस ले नहीं रहे। अगर कुछ शारीरिक अवस्था गड़बड़ हो, कुछ पारिवारिक घर है अदूर, कुछ समस्या हो तो मान लिया जाए, लेकिन वो अपने घर पर वो कर सकता है। यहां पर हमारी भक्ति में जो हम ये आलस कर रहे हैं, ये गुणों का प्रभाव है, काल का कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप सच्ची निष्ठा से चाहो और प्रयास करो तो वैष्णव की भगवान की कृपा से कुछ भी वस्तु असंभव नहीं है। प्रभुपाद का शब्द है, असंभव जो है वो शब्द मूर्खों की डिक्शनरी का है, ऐसा है ना कुछ, foolish words is impossible. Impossible words is foolish dictionary. Foolish dictionary. मूर्खों की dictionary का शब्द है कि असंभव कुछ है. हमारे साथ तो गुरु वैष्णव की कृपा है, इतना इतना दिया है प्रभुपाद ने, इस कान के भक्तों ने, संस्था ने. बस हमारी आलस्य ही कारण है और हम इतना महत्व नहीं दे रहे हैं इन आज्ञाओं को, शास्त्रों के निर्देश को. अगर थोड़ा सा महत्व और दे और प्रयास करे तो कृपा से असंभव भी नहीं है. फिर और भी बहाने बताए जा सकते हैं कि हम तो आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन ये आते ना ऐसा करता, इसलिए हम नहीं आते. ले गिरधारी में हम जो नहीं, हम होगा दोस्त. कभी कभी हम लोग कहते ये भगत हमको ऐसा बोल दिया ना, इसलिए हम नहीं आते. गिरधारी जाए ना बटी गया वाला पंडित गोड़े बेलाफा मारा हुआ जगन्नाथ है, हम तो दाओ तो बन रही है. तो एक लीला है ना जगन्नाथ जी की, दिया उसका. ये सब पति है. हम भक्तों को चाहिए कि शुद्ध भाव से प्रयास करें, कृपा से हम आ जाएंगे. आलस को त्यागते हुए और दूसरों को निग्लेक्ट करते हुए, हमारे शारीरिक कर्म, पारिवारिक कर्म, ये भौतिक देहात्म बुद्धि के जो भी कर्म है उनको गौण समझते हुए, भक्ति के अंगों को, आज्ञा को मुख्य समझते हुए हमें प्रयास करना चाहिए जीवन बीत रहा. तो कृपा से हम प्रकृति से पार हो जाएंगे. भगवान की और भक्तों की कृपा में वो बल है जिसके सामने काल को भी झुकना पड़ेगा, कलयुग को भी, और प्रकृति के गुणों को भी झुकना पड़ेगा. हम आलस निद्रा चली जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कृपा लेनी पड़ेगी भक्तों की. तो हमें ये करना चाहिए. और प्रभु जी बता रहे थे अच्छा, इसका बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी ने वर्णन दिया है आगे कि भगवान राम पुष्पक विमान में सबको लेकर अवध सांकेत गए. बाद में 13,000 वर्ष बाद में फिर इन्होंने राज्य किया. सीता माता जब पृथ्वी में समा गई, उसके बाद लक्ष्मण जी का सरयू में शरीर अंतर हो गया और उसके पीछे भी घटना हुई कि काल पुरुष मूर्तिमान होकर भगवान राम के पास मिलने आया और उनको राम ने बताया कि आपकी, राम को बताया कि आपकी लीला पृथ्वी पर अब समय पूरा हो गया है, आप अपने स्वधाम सांकेत पधारिए. तो उस समय दुर्वासा जी आ गए, है ना, ऐसी कथा दुर्वासा जी. और दुर्वासा ने मिलने को कहा, लेकिन वो जो काल पुरुष आया था राजा का वेश लेकर, और मीटिंग करते पहले प्रयोजन रखा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको प्राण दंड देने. तो लक्ष्मण जी को नियुक्त किया गया कि राम और उस काल पुरुष की चर्चा होगी, कोई आना नहीं चाहिए अंदर. लक्ष्मण को राम की आज्ञा, और दुर्वासा उसी समय, वो भी भेजा ही गया था एक रूप से, और दुर्वासा ने कहा हमको अभी मिलना है राम से. लक्ष्मण जी ने कहा क्षमा करिए, आज्ञा नहीं है भैया की. लेकिन वो माने नहीं, नहीं बोले जाप दे दूंगा, जला दूंगा पूरी अवध को. हाँ, तो भगवान लक्ष्मण ने सोचा कि यही संकेत होगा. उन्होंने कहा कि श्राप मत दीजिए, मैं जाकर बताता हूं. और उसको पता था कि जाकर बताऊंगा राम के वचन, उनकी प्रति रघुकुल रीति है. तो फिर वो आज्ञा, फिर उन्होंने निकाल दिया लक्ष्मण जी को अवध से. और राम विरह में एक दिन भी लक्ष्मण का जीवन संभव नहीं. उन्होंने उस वनवास प्रसंग में ही बता दिया था कि मैं जी नहीं सकता आपके बिना. तो जैसे ही निकाल दिया तो लक्ष्मण जी सरयू में प्रवेश कर गए. सरयू जो अयोध्या के तट पर है. तो आप पूछ रहे हैं कि उसके बाद लक्ष्मण जी सरयू में चले गए और उसके बाद 13,000 वर्ष तक कुछ राज किया भगवान राम ने, समथिंग. इतना पक्का, लेकिन मैं सुना हूं, पढ़ने में ये 13,000 वर्ष नहीं है, लेकिन सुनने में आया है हमको. और इसका वर्णन ये नवम स्कंद में है. ये रामलीला के बाद लव कुश के वंशावली का वर्णन है. तो ये कथा त्रेता की है और उस समय राजा लोग, आप देखते हो ये 50,000 वर्ष तपस्या करेंगे दिलीप आग, तो उतना आयु था, 7,000 वर्ष तपस्या करेंगे. तो उस अनुसार से समझ में आता है कि होने चाहिए 13 आदि वर्ष, कोई बड़ी बात नहीं है. तो राज किया और उसके बाद सारे अवधवासियों को पुष्पक विमान में, वैकुंठ में सांकेत अपने अवध धाम ले गए. ये भी हमने सुना है, फिर भी और कुछ हो सकता है. ठीक है, और कुछ माताओं में? माताएं तो बड़ी सुंदर भक्ति करती है. कुछ जिज्ञासा? हाँ,